ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल के जल विद्युत, पर्यटन और कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जापानी निवेशकों से किया आग्रह। स्वच्छ, निष्पक्ष और विश्वसनीय रूप से चुनाव संपन्न कर जन निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए आतुर हैं प्रधानमंत्री सुशीला कार्के का कथन। चालू आर्थिक वर्ष के पहले छह महीनों में नेपाल के कुल वस्तु निर्यात में 43.8% की वृद्धि होने के नेपाल राष्ट्र बैंक के आंकड़े। और अमेरिका में भारी हिमपात, 2400 से अधिक उड़ाने बाधित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उत्पादन, जल विद्युत, पर्यटन और कृषि जैसे नेपाल की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने का जापानी निवेशकों से आग्रह किया है। जापान के औपचारिक दौरे पर रहे राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल और जापान के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 70वें वार्षिक उत्सव पर टोक्यो में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ऐसा आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की प्राथमिकता अब नेपाली जनता के द्रुत सामाजिक आर्थिक विकास, प्रगति और समृद्धि हासिल करने पर केंद्रित है। ये जानकारी राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने दी। टोक्यो में ही व्यापारिक समुदाय के सदस्यों के साथ एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल में व्यापारिक अवसर ढूंढने के लिए उन्हें आह्वान किया। उन्हें भरोसा दिया कि जापानी व्यापारिक समुदाय को नेपाल में निवेश और व्यापार के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए नेपाल सरकार कटिबद्ध है। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव अमृत बहादुर राय और सहसचिव भृगु ढुंगाना ने नेपाल में निवेश की संभाव्यता पर अपनी प्रस्तुति रखी थी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने निर्वाचन आचार संहिता का पूरी तरह पालन करते हुए चुनाव को स्वच्छ और भयरहित बनाने का सभी से आग्रह किया है। आज राष्ट्रीय सभा की बैठक में राष्ट्रीय सदाचार नीति संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन 2082 पर विमर्श में उठे विषयों के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष और विश्वसनीय रूप से चुनाव संपन्न कर जन निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए वे आतुर हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निकायों के काम कार्यवाहियों को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाकर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण में वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई हैं। राष्ट्रीय सभा की आज हुई बैठक ने 3 अध्यादेशों को स्वीकृत किया है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अरियाल द्वारा प्रस्तुत मतदाता नामावली आयन 2073 में संशोधन के लिए लाया गया अध्यादेश 2082, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन अध्यादेश 2082 और नेपाल विशेष सेवा आयन द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2082 को सभा ने स्वीकृत किया। इसी बैठक में सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने राष्ट्रीय सदाचार नीति पर सांसदों द्वारा चर्चा के दौरान उठाए गए विषयों और प्रधानमंत्री सुशीला कार्के द्वारा व्यक्त विचारों सहित प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने का निर्देश नेपाल सरकार को दिया। इसी प्रकार बैठक में सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति की सभापति माया शर्मा ने अध्यागमन आयन और उस आयन के अंतर्गत बने प्रत्यायोजित विधायनों से संबंधित अध्ययन प्रतिवेदन 2082 सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक माघ 23 गते शुक्रवार को दोपहर 1:15 पर बुलाई गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव लक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार और घृणास्पद अभिव्यक्तियों पर निगरानी बढ़ा दी है। आयोग ने चुनाव से संबंधित ऐसी सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण और नियामक निकायों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। नियामक निकायों के साथ समन्वय में आयोग ने सूचना सदाचार इकाई का गठन कर उसके माध्यम से कार्य शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्के ने कहा कि नेपाल में बोली जाने वाली भाषाएं हमारी संपत्ति हैं, इसलिए उन्हें समाप्त होने नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में भाषा आयोग द्वारा तैयार किए गए 2 अलग अलग विषयों पर आधारित अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण करते हुए उन्होंने भाषा संरक्षण के लिए संबंधित सभी पक्षों को सकारात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भाषा आयोग के अध्यक्ष डॉ गोपाल ठाकुर के नेतृत्व में आए आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मातृभाषा शिक्षा से संबंधित प्रतिवेदन और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा दशक 2022 से 2032 के लिए नेपाल की राष्ट्रीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रतिवेदन प्रधानमंत्री कार्की को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन लेने के बाद प्रधानमंत्री कार्की ने कहा, हमारे देश में 124 भाषाएं हैं, ये सभी हमारी संपत्ति हैं। इनमें से कुछ भाषाएं लुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए किसी भी भाषा को मरने नहीं देना चाहिए। हर भाषा समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाषाओं के संरक्षण के लिए इस तरह के अध्ययन और शोध कार्य निरंतर होते रहने की आवश्यकता भी बताई। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पड़ोसी देश में देखे गए निपाह वायरस संक्रमण के जोखिम नेपाल में कम होने के बावजूद सतर्क रहने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने आग्रह किया है। आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए मंत्रालय अंतर्गत के इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा ने बताया कि पड़ोसी देश की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारी के कदम के रूप में देशभर के स्वास्थ्य संस्थानों और निकायों को सतर्क किया गया है और निपाह वायरस की जांच के लिए एक अंतरिम परीक्षण एल्गोरिदम तैयार किया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य आपातकालीन तथा आपदा व्यवस्थापन इकाई प्रमुख डॉ प्रकाश बुढ़ाथोकी के अनुसार निपाह वायरस से संक्रमित होने पर बुखार आना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, उल्टी होना तथा गंभीर मामलों में होश खोने जैसे संदिग्ध लक्षण दिखाई देते हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और मानवीय अतिक्रमण के कारण कंचनपुर के सिमसार क्षेत्र और ताल तलैयों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। जैविक विविधता के संरक्षण, जल संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता के आधार स्तंभ माने जाने वाले सिमसार क्षेत्र संरक्षण और संवर्धन के अभाव में संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। सिमसार क्षेत्र सिर्फ प्राकृतिक जल संग्रहण स्थल ही नहीं है बल्कि दुर्लभ जलीय जीव, जल पक्षी, मछलियां, मगरमच्छ, कछुए, अजगर और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए सुरक्षित आवास के रूप में भी महत्वपूर्ण है। शुक्ला फाटा राष्ट्रीय निकुंज के संरक्षण अधिकृत विनय कुमार झा ने सिमसार को जैव विविधता संतुलन का सूचक बताते हुए कहा कि यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो पूरी जैविक विविधता ही संकट में पड़ जाएगी। आर्थिक वर्ष 2082-83 के 6 महीनों में नेपाल के कुल वस्तु निर्यात में 43.8% की वृद्धि हुई है। इस अवधि में निर्यात बढ़कर 142.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि में निर्यात 31.8% बढ़ा था। गंतव्य के आधार पर भारत और अन्य देशों की ओर निर्यात में क्रमशः 57.0% और 10.7% की वृद्धि हुई है, जबकि चीन की ओर निर्यात में 66.7% की कमी आई है। ये जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक ने दी। वस्तुओं के आधार पर सोयाबीन तेल, इलायची, पाम तेल, जूट उत्पाद, जूते और चप्पल आदि के निर्यात में वृद्धि हुई है, जबकि जिंक शीट, पार्टिकल बोर्ड, चाय, ऊनी कालीन, हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ अन्य हस्तकला उत्पादों के निर्यात में भी गिरावट दर्ज की गई है। आर्थिक वर्ष 2082-83 के 6 महीनों में कुल वस्तु आयात 14.2% बढ़कर 939.2 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि में आयात 7.1% बढ़ा था। आयात के स्रोत देशों के आधार पर भारत, चीन और अन्य देशों से आयात क्रमशः 5.9%, 22.1% और 32.4% बढ़ा है। आर्थिक वर्ष 2082-83 के 6 महीनों में कुल वस्तु व्यापार घाटा 10.1% बढ़कर 797 अरब रुपए पहुंच गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह घाटा 4.4% बढ़ा था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले शक्तिशाली हिम तूफान के कारण 2400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट डगलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया कि तूफान के चलते शनिवार और रविवार तक 1800 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इस बीच रनवे और सड़कों से बर्फ हटाने के लिए 300 कर्मचारियों की सफाई टीम तैनात की गई है। इसी तरह हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रविवार को अटलांटा आने वाली लगभग 50 उड़ानों को छोड़कर 600 से अधिक उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। अमेरिकी मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण कैरोलिना में भारी हिमपात और तेज हवाओं के साथ तीव्र तटीय तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार तूफान के साथ आई शक्तिशाली ध्रुवीय हवाओं के कारण दक्षिण फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी, जबकि पश्चिम वर्जीनिया में तापमान -33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के जलविद्युत, पर्यटन और कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने का राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने जापानी निवेशकों से किया आग्रह। स्वच्छ, निष्पक्ष और विश्वसनीय रूप से चुनाव संपन्न कर जननिर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए आतुर हैं प्रधानमंत्री सुशीला कार्के का कथन। चालू आर्थिक वर्ष के पहले 6 महीनों में नेपाल के कुल वस्तु निर्यात में 43.8% की वृद्धि होने के नेपाल राष्ट्र बैंक के आंकड़े। और अमेरिका में भारी हिमपात, 2400 से अधिक उड़ाने बाधित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।